हरे कृष्ण। तो आप सबका स्वागत है आज की कक्षा में। और जैसा कि परंपरा है कि हम लोग लीलावली से पाठ करते हैं, बट आज गौर किशोरदास बाबा जी का तिरुभाव तिथि है, तो प्रयास करेंगे कि गौर किशोरदास बाबा जी के बारे में महाराज ने काफी डिटेल्स दिए हैं कि आप इसमें से बता सकते हो, तो उसमें से प्रयास करेंगे कि आप हम लोग गौर किशोरदास बाबा जी के बारे में बता रहे हैं पहले। और मैं सबसे पहले योलिनस भक्ति माधुरी गोविंद स्वामी महाराज का आशीर्वाद देना चाहता हूं ताकि मैं आप लोगों के सामने कुछ चर्चा कर सकूं। तो गौर किशोरदास बाबा जी के बारे में चर्चा करने से पहले आज बहुत इंपॉर्टेंट है प्रबोधिनी एकादशी, जिसको देवोत्थान एकादशी के नाम से भी जाना जाता है। पिछले चार महीने पहले एकादशी आई थी, उसको बोलते हैं देवशयनी एकादशी। देवशयनी एकादशी में जो है वो भगवान, ऐसा माना जाता है कि भगवान जो है वो योग निद्रा में सोते हैं, और ये इस एकादशी के लिए माना जाता है कि भगवान आज के दिन जो है वो उठते हैं इस योग निद्रा से, तो इसीलिए उसको देवोत्थान एकादशी बोला जाता है। और ये एकादशियों में सर्वश्रेष्ठ एकादशी है जो और बहुत इंपॉर्टेंट है खास करके गौड़िया वैष्णव के लिए, क्योंकि ये कार्तिक महीने में आता है और कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष का ये जो दूसरा ये एकादशी है देवोत्थान एकादशी, इसमें जो इससे भीष्म पंचक इसी से जुड़ा हुआ है। और भीष्म पंचक एक तो महीनों में जो 12 महीने होते हैं उसमें कार्तिक को सर्वश्रेष्ठ माना गया है गौड़िया वैष्णव के हिसाब से। भगवान ने इसको, भगवान कहते हैं कि वो जो इसके नेक्स्ट महीना आएगा मार्गशीर्ष का, भगवान उसको सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। तो भगवान भगवद्गीता में कहते हैं मासा नाम मार्गशीर्ष हो, तो मैं महीनों में मार्गशीर्ष महीना हूं जो कि अभी अगला नेक्स्ट महीना है, तो फिर ये महीना कैसे श्रेष्ठ हो गया। अब प्रश्न ये उठता है कि भगवान भगवद्गीता में कहते हैं कि मैं मार्गशीर्ष हूं महीनों में, तो फिर कार्तिक कैसे श्रेष्ठ हो गया, क्योंकि ये जो महीना है वो राधा रानी को बहुत प्रिय है। राधा रानी जो क्यों प्रिय है, क्योंकि भगवान ने इसमें बड़ी सारी लीलाएं की हैं इस महीने में, इसीलिए गौड़िया वैष्णव के लिए जो है ये लीला, ये जो महीना है उसके ज्यादा प्रिय है। और जो गौड़िया वैष्णव है उसके लिए कृष्ण प्रेम से ज्यादा इंपॉर्टेंट है राधादास्यम, वो राधादास्यम के लिए प्रयास करता है कृष्ण प्रेम के लिए नहीं, क्योंकि उसका जो रास्ता है और जो मंजिल है वो राधादास्यम है, यानी राधा रानी के अंतर्गत रहकर के सेवा करना। तो इसीलिए चूंकि ये राधा रानी को बहुत प्रिय है ये महीना, इसीलिए गौड़िया वैष्णव के लिए इस महीना सर्वश्रेष्ठ है। तो उसमें जो है, और भीष्म पंचक का संबंध इससे है कि आपको भीष्म पंचक क्या होता है, पंचक हर महीने आता है एक्चुअली, शायद आप लोगों को पता होगा, तो ये पंचक हर महीने आता है, पर इस महीने जो कार्तिक है, भीष्म पंचक का संबंध इसलिए है कि भीष्म जो लास्ट के 5 दिन थे उसमें उन्होंने फास्ट अनटू डेथ इस वो ले लिया था, व्रत ले लिया था, क्योंकि उनको शरीर छोड़ना था, तो उससे 5 दिन पहले जो है उन्होंने ये व्रत शुरू कर दिया था, और जब तक उन्होंने शरीर छोड़ा तब तक वो व्रत में रहे, इसीलिए इसको भीष्म पंचक कहा जाता है। भीष्म का वैसे मतलब है बहुत कठिन, तो ऐसी उनका नाम भी इसीलिए पड़ा था क्योंकि जो भीष्म का मतलब है बहुत कड़ा हो, बहुत कठिन हो, बहुत मुश्किल वाला हो, तो ये एक कठिन प्रतिज्ञा लेनी होती है इसमें। जैसा कि प्रभु जी बता रहे थे आज मंगल आरती के अनाउंसमेंट में कि जो कोई भी व्यक्ति इस 5 दिन में जो तपस्याएं करता है, वो पिछले 4 महीनों में जो है वो तपस्या करने का जो फल है उसको प्राप्त कर सकता है, वो केवल इन 5 दिन की तपस्या करके। जिसको जो नहीं कर पाए हैं पिछले 4 महीनों में, जो कोई तपस्या नहीं कर पाए, उनके लिए एक आखिरी मौका है आज से लेकर 28 तारीख तक जो है हम इसका पालन कर सकते हैं। बेस्ट बताया गया है भीष्म पंचक में कि अगर हम अन्न ना लें 5 दिन तक, तो ये बेस्ट व्रत बताया गया कि हम अगर अन्न का को छोड़ दें अगर 5 दिन तक सबसे अच्छा माना जाता है, और नहीं तो कम से कम एक टाइम जो है अन्न लें और एक टाइम व्रत करें। उसमें भी है कि एक टाइम अगर आप व्रत कर एक टाइम अगर अन्न लेते हैं तो जो अन्न लेने का समय है वो रात्रि का होना चाहिए, दिन का नहीं। दिन में जो है फास्ट करें और रात्रि को अन्न लें, तो ये जो है शास्त्रों के हिसाब से ये सम्मत ज्यादा अच्छा है। कई बार इस फास्टिंग को लोग करते हैं तो दिन में कभी ले लिया एक बार और अब नहीं लेंगे, बट ये तरीका उचित नहीं है। तरीका उचित ये है कि रात को जो है वो लेना चाहिए, कुछ जो कुछ भी आपको खाना है वो फिर रात को खाएं। हाँ, जो फ्रूट्स में है या बाकी दूध या किसी इस तरह लिक्विड में है वो लोग दिन में चाहे एक बार दिन में ले लें और एक बार रात में ले लें। उनके लिए भी रिस्ट्रिक्शंस हैं, नॉट मोर देन टू टाइम्स। ये नहीं कि आपका मैं अब नहीं खा रहा हूं या अन्न नहीं खा रही हूं तो पता चला कि चार बार खा लिया, चार बार फ्रूट खा लिया, चार बार दूध पी लिया, चार बार के लिए वो नहीं है। दो बार दिन में आप एक बार लीजिए और रात्रि के समय एक बार लीजिए। तो ये इस तरह से जो है इसका पालन करना होता है। और कई लोग पानी जल के ऊपर रखते हैं तो जल वालों के लिए छूट है, वो जल पी सकते हैं जितनी बार, और कई लोग बिना जल का भी रखते हैं। हमारे यहाँ पुजारी जी थे पिछले दो साल पहले, उन्होंने बिना जल का रखा था 5 दिन तक, और अभी वो इसमें क्या बोलते हैं गोवर्धन में है अभी वो प्रभु जी, अभी भी हैं गोवर्धन में और मेरे हमेशा रखते हैं। यू डोंट टेक इवन वाटर फॉर 5 डेज। तो विभिन्न तरह की तपस्याएं हैं और इस तरह से जो है शरीर का शुद्धिकरण भी होता है और आध्यात्मिक उन्नति भी, जो आपको बताया गया था पहले 4 महीने का जो फल है वो आप केवल आप 5 दिन की तपस्या करके प्राप्त कर सकते हैं। तो वही है, तो आज जो है थोड़ा गौर किशोरदास बाबा जी के बारे में जो है हम उस पर चर्चा करेंगे, और महाराज की कृपा से काफी कुछ मिल गया गौर किशोरदास बाबा जी महाराज के बारे में। तो मैं थोड़ा सा उनके लाइफ से थोड़ा सा इसमें से पढ़ देता हूं और बाकी जो टीचिंग्स हैं वो महाराज ने दिए हैं उसमें से टीचिंग्स बताएंगे आपको, क्योंकि जो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज हैं उनको साक्षात बैराग की मूर्ति कहा जाता है। बैराग की मूर्ति का मतलब है कि जो आप बैराग की मूर्ति का जो बैराग के स्वरूप है, मतलब जिसके अंदर जो है केवल बैराग है। और बैराग भी ऐसा था कि वो कपड़े कभी किसी से मांग के नहीं लेते थे, जो डेड बॉडी था पहले कोई डेड बॉडी में कपड़े होते थे किसी के और वो छोड़ के लोग फेंक देते थे उसको आस पास में, तो गौर किशोरदास बाबा जी उस कपड़े को पहन लेते थे, क्योंकि उनको लगता था कि इस किसी भी कर्मी व्यक्ति से मांगने से अच्छा है कि मैं जो ये फेंके हुए कपड़े हैं उस कपड़े को पहन लूं, और इसी और कर्मी व्यक्ति जो है उससे हमेशा दूर रहते थे गौर किशोरदास बाबा जी। तो इसमें ये कहा गया कि जो गौर किशोरदास बाबा जी के बारे में शायद आपको पता होगा, पहले वो गृहस्थ थे और उनकी जो पत्नी है उनका निधन 1849 ईस्वी में हुआ था और उसके बाद उन्होंने गृहस्थ जीवन त्याग दिया और वृंदावन आ गए, और वृंदावन में आके उन्होंने भागवत दास बाबा जी से दीक्षा ग्रहण की। भागवत दास बाबा जी जो है उनके गुरु थे, और जो कि जगन्नाथ दास बाबा जी के डिसाइपल थे, और गौर किशोरदास बाबा जी के जो शिक्षा गुरु हैं वो भक्ति विनोद ठाकुर हैं, उनके दीक्षा गुरु जो हैं वो भागवत दास बाबा जी। तो ये जो आप लाइन में देखते हैं, और भक्ति विनोद ठाकुर के भी शिक्षा गुरु हैं जगन्नाथ दास बाबा जी, और उनके जो दीक्षा गुरु हैं वो विपिन बिहारी गोस्वामी हैं। तो इस तरह से ये, और गौर किशोरदास बाबा जी 30 वर्षों तक वो गोवर्धन में, नंदगांव में, बरसाना में, राधा कुंड, सूर्य कुंड, रावल और गोकुल में, इन जगहों पर जो है वो एक जगह नहीं रुकते थे, इन अलग अलग जगहों पर पेड़ के नीचे रहते थे। इन पेड़ के नीचे भी एक जगह पर नहीं कि एक जगह पर एक पेड़ के नीचे रहेंगे, पेड़ के नीचे भी अलग अलग जगह पर अलग अलग पेड़ के नीचे रहते थे। उनका ऐसा वैराग्यपूर्ण जीवन था, और एक दिन हर जगह एकांत में बैठकर प्रतिदिन वो 2 लाख नामों का उच्चारण करते थे, यानी 128 वाला रोज करते थे गौर किशोरदास बाबा जी। इनका प्रतिदिन का नियम था 128 माला करने का, प्रतिदिन का नियम था। हम 64 माला का मैं जपाथन चल रहा है इस्कॉन में भी, पंजाब राग में ऊपर शुरू हो चुका है, तो 64 माला करने में भी लगता है कि हम लोग प्रयास भी करेंगे तो सुबह से शाम हो जाएगी, तभी बड़ी मुश्किल से पता नहीं हो पाएगा कि नहीं भगवान की कृपा से। बट गौर किशोरदास बाबा जी 128 माला का उनका प्रतिदिन का एक नियम था कि 128 माला का जप करते थे। और और हमेशा जो है वो राधा और गोविंद की वेदना के कारण विलाप करते रहते थे, मतलब रात जो भगवान की विरह में जो है हमेशा विलाप करते रहते थे। और उसके बाद जो ब्रज के द्वादश वन है यानी 12 वन है ब्रज में, उन 12 वनों में वो घूमते रहते थे कई बार, इन बात पेड़ों के अलावा इन जगहों के अलावा जो है वो इन 12 वनों में भी घूमते थे, मतलब आप मतलब हमेशा ट्रैवलिंग रहते होंगे कुछ कुछ समय के बाद, तो वो द्वादश वन में भी चढ़ते थे और जोर से हरिनाम करते थे कई बार, खूब जोर जोर से चिल्ला करके हरिनाम करते थे, भगवान को बुलाते थे, कजर कीर्तन करते थे। और एक भजन जो है उन्हें बहुत प्रसिद्ध था, मतलब उनको बस बहुत पसंद था, गोयाए मो प्रेममयी राधे राधे, राधे राधे मो जय राधे राधे, तो ये जो एक भजन था उनको बहुत प्रिय था और ये भजन जो है वो हमेशा गाते रहते थे। उसमें हे राधे राधे आप कहाँ हैं, हे प्रेम स्वरूपा राधे राधे आपकी जय हो, हे राधे आपकी जय हो, इस तरह से जो है गौर किशोरदास बाबा जी इसको पुकारते हुए और जो 12 वन है उसमें विचरण करते रहते थे, घूमते रहते थे। और जो गौर किशोरदास बाबा जी जो है वो उनका जो वैराग्य है कहा जाता है कि उनके वैराग्य से किसी की तुलना नहीं की जाती, किसी के वैराग्य की तुलना नहीं की जा सकती, इतने वैरागी थे वो कि कोई उनके आसपास भी नहीं था वैरागी के स्तर पर। और कभी कभी जब उनको भूख लगती थी तो राधा कुंड या यमुना से मिट्टी निकाल करके खा लेते थे, ऐसे नहीं कि कभी भिक्षा कर, उनको लगता था कि जो कर्मी लोग हैं उनसे भिक्षा मांगने से अच्छा है कि मैं मिट्टी खा लूं, कर्मी लोगों के अन्न खाने से मेरी वैसे ही मृत्यु हो जाएगी, उनको लगता था कि मैं स्पिरिचुअली डेड हो जाऊंगा कर्मी लोगों का अन्न खाने से, तो इससे अच्छा है कि मैं यमुना का मिट्टी खा के जो है मेरी मृत्यु हो जाए। तो ये भाव में जो है गौर किशोरदास बाबा जी रहते थे हमेशा। और कभी कभार जो है कहते हैं कि साल में एक आध बार ऐसा होता था जो ब्रजवासियों से, जो ब्रजवासी गांव के ब्रजवासी थे उनसे कभी कभी मधुकरी करते थे, वंस ए वाइल्ड कभी साल में जो है वो मधुकरी करते थे, ये उनकी दैनिक वृत्ति नहीं थी। और जो है उसमें भी जैसे वो थोड़ा सा, जैसे एक मधुमक्खी जो है वो थोड़ा सा शहद लेती है किसी फूल से, उसी तरह गौर किशोरदास बाबा जी किसी के घर से भी थोड़ा सा ग्रहण करते थे, अगर मधुकरी भी करते थे अगर तो थोड़ा सा अन्न ग्रहण करते थे। और वो राज जो जितने भी ब्रजवासी थे उनको राधा और कृष्ण का परिकर मानते थे, ये सब राधा कृष्ण के जो है परिकर हैं, तो इसीलिए वो उनसे मानने इसलिए जाते थे कि उनको राधा कृष्ण का परिकर समझते थे, ये लोग राधा कृष्ण के जो है नित्य परिकर है, तो इन्हें इनसे मांगने में मेरा जो है अधिकार है। तो इस तरह से जो है वो, और वहां के जो सबको प्रणाम करते थे गौर किशोरदास बाबा जी, जो ब्रज के गाय को, पशु को, पक्षी को, वृक्ष को, लता को, कीट को, चींटी को, किसी को भी प्रणाम कर लेते थे, मतलब क्योंकि उनको लगता था ये सब जो है वो कृष्ण के परिकर है, ये ब्रज में रहने वाले कीट पतंगे सुअर पशु पक्षी सब कृष्ण के जो है परिकर है, इसलिए मुझे इनको प्रणाम करना चाहिए। हम अपनी स्थिति देखें कि हमें वृंदावन में जाके भी कई बार लगता है, हम नालियों को देखते हैं या कभी सुअर को देखते हैं तो हमें लगता है ये क्या है, वृंदावन ऐसा होना चाहिए, ये वृंदावन है, तो एक्चुअली वृंदावन जो है वो जो भगवान की महामाया शक्ति है वो वृंदावन को ढक के रखती है, हमारा जैसे व्यक्ति को वृंदावन दिखाई नहीं देगा। श्री राधा राधिका भगवान की, श्री कृष्ण बलराम जी की, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, तो महामाया जो है वो धाम को ढक के रखती है, भगवान की वो जैसे भगवान के ऊपर एक कर्टन रखती है उसी तरह वो धाम को भी ढक के रखती है, भगवान को, भगवान के धाम को भी ढक के रखती है। जो व्यक्ति जैसी जिस भाव का है उसको धाम उसी रूप में दिखाई देगा, अगर हम गंदे हैं तो हमें वहां वृंदावन में जाके भी सारी गंदगी दिखाई पड़ेगी, और हमें उस गलियों में वो सुअर घूमते और रिक्शे वाले और इस तरह के लोग नालियां भी हमें दिखाई देंगी, परंतु जो शुद्ध भक्त है जिनकी बहुत ऊंची स्थिति है वो लोग वृंदावन को किसी और रूप में देखते हैं। अभी जो है अभी हम लोगों को एक सौभाग्य मिला था कि गोवर्धन परिक्रमा करने का, तो उस गोवर्धन परिक्रमा के रास्ते में हमें भक्ति सिद्धांत महाराज जो है वो मिले, गोवर्धन की परिक्रमा के रास्ते में, तो उस गोवर्धन परिक्रमा के रास्ते में भक्ति सिद्धांत महाराज क्या कर रहे थे, परिक्रमा नहीं करने आए थे, वो घूमने नहीं आए थे, वो ब्रज में वो वहां झाड़ू लगा रहे थे, परिक्रमा के मार्ग को साफ कर रहे थे, और उनके साथ जो है कई और डिवोटी जो है उस उद्धव कुंड के पास उस परिक्रमा मार्ग पर झाड़ू लगा रहे थे। तो मैंने बातचीत किया महाराज से, तो महाराज ने बहुत इंस्पायर किया कि आप लोगों को भी यहां जो है टूरिस्ट बन के नहीं आना चाहिए। महाराज ने कहा टूरिस्ट बन के नहीं आना चाहिए ब्रज में, हम जब भी ब्रज में आए हमें सेवा करने के लिए आना चाहिए। असली जो ये हम टूरिस्ट बन के आएंगे तो इसका मतलब हम उस व्यक्ति से अलग नहीं है जो बाहर का व्यक्ति है और यहां पर उसको धाम को जो कोई घूमने आता है। हमारा उद्देश्य धाम घूमना नहीं है, हमारा उद्देश्य धाम की सेवा करना है, महाराज ने समझाया है। और उन्होंने भक्तों को भी इंस्पायर किया, आशीर्वाद भी दिया और मैंने उनसे वादा भी किया कि हम हर दो महीने में यहां आकर के सफाई करेंगे जहां कहीं भी मौका मिला। और महाराज ने जगह भी बताई कि आप कहीं भी कर सकते हो, राधा कुंड की सीढ़ी की सफाई कर सकते हो, राधा कुंड के आसपास और वृंदावन के किसी भी क्षेत्र में गोवर्धन परिक्रमा की 64 समाधि एरिया की कहीं जहां कहीं भी मौका मिलता है हमें उस एरिया की जाकर के सफाई करनी चाहिए। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी प्रेरणा की बात है। तो ये इसलिए है कि जो गौरकिशोर दास हमारे यहां इस्कॉन के सन्यासी हैं उनके अंदर किस तरह के भाव हैं, वो गोवर्धन की परिक्रमा लगाने नहीं सफाई करने गए। कार्तिक में हर व्यक्ति परिक्रमा करना चाहता है कि गोवर्धन की परिक्रमा कर लें, और महाराज जो है वहां पर कह रहे थे कि इस ब्रजवासियों इस सफाई करने से जो है ये जहां लोग चलेंगे उनको कितनी खुशी होगी, तो वो जो है उस परिक्रमा का जो फल है उससे ज्यादा फल होगा इसका कि हम इसकी सफाई करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हम धाम की और भक्तों की सेवा करें। और गौरकिशोरदास बाबा जी बरसाना में रहते हुए प्रतिदिन जो है राई एवं कानू के का फूल है उसकी एक माला बनाया करते थे। पता नहीं मुझे भी, मैं भी अवगत नहीं हूं तो कानू का फूल कैसा होता है, पर गौरकिशोरदास बाबा जी जो है उसका फूल का जो है फूल के माला बनाते थे और राधा कृष्ण को अर्पित करते थे प्रतिदिन। अब देखिए इतना भजन करने के बावजूद जैसे हम सामान्यतः क्या होता है कि हम कोई सेवा नहीं करना चाहते, हमें लगता है कि मैंने 64 माला कर ली, 32 माला कर लिया, 25 माला कर लिया, बहुत है, अब सेवा करने की आवश्यकता नहीं है और एकदम से भागते हैं यहां से। परंतु वो देखिए 128 माला करते थे और प्रतिदिन राधा कृष्ण के लिए एक फूलों की माला बनाते थे और फिर राधा कृष्ण को अर्पित भी करते थे। और फिर वो अंतर दिव्य युगल की प्रेरणा से बाबा जी के मन में नवद्वीप धाम के, इसके बाद जो है वो 30 साल तक यहां रहने के बाद उनके मन में इच्छा हुई कि मैं अब नवद्वीप मंडल जाऊं, और 30 साल तक वृंदावन में रहने के बाद जो है फिर गौरकिशोरदास बाबा जी नवद्वीप मंडल चले गए और उन्होंने गौरांग महाप्रभु के समस्त लीला स्थानों की यात्रा की। वो नवद्वीप में जहां भी जाते थे वो भजन गाया करते थे और निताय की कृपा से गौरांग की कृपा प्राप्त होती है। ये जो भजन था एक उसका अर्थ लिखा हुआ है कि निताय की कृपा से गौरांग की कृपा प्राप्त होती है जिसके द्वारा व्यक्ति कृष्ण प्रेम का अधिकार प्राप्त करता है, कृष्ण प्रेम से श्रीमती राधा रानी तथा गोपियों की सेवा प्राप्त कर सकता है। इस तरह से जो है उनका ये भाव था कि नित्यानंद प्रभु की सेवा करके गौरांग की कृपा मिलेगी और गौरांग प्रभु की मारा पुत्री सेवा करके जो है कृष्ण प्रेम मिलेगा और कृष्ण प्रेम से है जो है राधा रानी और गोपियों की सेवा प्राप्त होगी। तो मेन उद्देश्य क्या था, राधा रानी की सेवा करना और गोपियों की सेवा करना, तो ये जो है उनका उद्देश्य था। और वो रूप और रघुनाथ जैसे रूप और रघुनाथ दास जिस तरह से उनके रघुनाथ दास में और रूप गोस्वामी में और रघुनाथ गोस्वामी जिस तरह के बैराग्य थे, गौरकिशोरदास बाबा जी में भी उसी तरह का बैराग्य था। वो पूर्णतया विरक्त थे और केवल जैसे कि मैंने आपको पहले बताया अपने तन को ढकने के लिए भी जो है वो वस्त्र पहनते थे और वो भी उन वस्त्रों को जो वस्त्र जो है वो बहिष्कृत होता था या कोई भी व्यक्ति जो मृत व्यक्ति के शरीर से उसको फेंक दिया जाता था उस वस्त्र के ऊपर थोड़ा सा गंगा जल डालते थे, उसको शुद्ध कर देते थे और उसको फिर पहन लेते थे। और अपने पास उनके पास हमेशा दो बुक होती थी, मतलब दो किताबें अपने पास हमेशा रखते थे, वो नरोत्तम दास ठाकुर की प्रार्थना और प्रेम भक्ति चंद्रिका। नरोत्तम दास ठाकुर जी ने ये दो बुकें ही लिखी हैं और ये दोनों बुक जो है ये दोनों पुस्तकें जो है वो अपने पास हमेशा रखें, प्रार्थना बुक और प्रेम प्रेम भक्ति चंद्रिका। और एकादशी के दिन तो गौर किशोरदास बाबा जी जल भी ग्रहण नहीं करते थे, मतलब एक बूंद जल भी नहीं देते थे। और उस जो वहां और जहां जो ब्रजवासी उन्हें मिलता था उन्हें महाभागवत मानते हुए उनकी सेवा करने का प्रयास करते थे। और कोई अगर दूसरा व्यक्ति उनकी सेवा करने का प्रयास करता था तो कभी उस सेवा को स्वीकार नहीं करते, किसी भी तरह की सेवा को स्वीकार नहीं करते थे। और खास करके वो नियमित रूप से जो गोद्रुम द्वीप में स्वानंद सुखद कुंज में भक्ति विनोद ठाकुर के यहाँ संग करते थे और उनसे जो है भागवत का श्रवण करते थे, और वहीं पर वो भागवत सुनने जाया करते थे। और परंतु उन्होंने कभी किसी को अपने शिष्य बनाने की कोशिश नहीं की, परंतु कई बार उन्होंने भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उनके उन्हें इसके लिए प्रेरित किया कि आप शिष्य बनाइए, तो उन्होंने कहा ठीक है मैं विचार करूंगा, ये बात बोल करके टाल देते थे, मगर किसी को शिष्य बनाते नहीं थे किसी को। और एक बार जो है फिर उन्होंने भक्ति सिद्धांत महाराज की विनम्रता और उनके आसक्ति को अपने प्रति आसक्ति को देखते हुए गौर किशोरदास बाबा जी ने उन्हें भक्ति सिद्धांत महाराज को एकमात्र शिष्य के रूप में स्वीकार किया और उनका उन्होंने नाम दिया बासभानवी दैतादास। नाम है जो दीक्षित नाम है वो है बासभानवी दैतादास, तो ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी का नाम है। और कई बार जो है वो भौतिक जो कई बार लोग आते थे बाबा जी का के बारे में बहुत प्रसिद्धि हो गई थी, तो कई बार लोग दूर दूर से आते थे बाबा जी आशीर्वाद दे दीजिए, तो बाबा जी जो है वो उसके लिए बहुत दूर दूर रहते थे और खास करके टॉयलेट के पास जाकर के जप किया करते थे, क्योंकि जो पब्लिक टॉयलेट्स होता थे वहां पर इतनी बदबू आती थी कि जो आम लोग है वो वहां जाता नहीं था, अगर वो व्यक्ति जाएंगे नहीं तो वह उनसे आशीर्वाद लेने भी नहीं जाएंगे क्योंकि बदबू इतनी आती थी। तो गौर किशोरदास बाबा जी ताकि ये लोग तंग ना करें इसलिए वहां रहते थे। तो किसी ने पूछा बाबा जी आप कैसे यहां पर भजन करते हैं, तो उन्होंने बोला कि इन ये जो लोग मांगने आते हैं इन गंदगी से अच्छा है ये वाली गंदगी, इनकी इसकी गंदगी तो मुझे सीधे सीधे मेरे भजन को प्रभावित करेगी, तो मैं अच्छा है कि मैं इस गंदगी को सह लूं कि दूसरे ऐसे लोगों जो गंदे लोगों के जो है उसको सहने से अच्छा है। आप खुद सोचिए कैसा वैराग्य था उनका कि किस तरह से वो भजन करते थे। और एक बार जो है उन्होंने कई बार एक बार सरकारी अधिकारी उनके पास आए, उन्होंने कहा कि हम आपके लिए एक भजन कुटीर का निर्माण कर देते हैं, तो बाबा जी महाराज ने स्वयं को एक टॉयलेट के अंदर बंद कर लिया कि मुझे कोई भजन कुटीर नहीं चाहिए, मुझे किसी से कोई फेवर नहीं चाहिए। और अधिकारी तब तक बाहर नहीं निकले जब तक अधिकारी वहां से चला नहीं गया, वो ऑफिसर जो था वो चाहता था कि गौर किशोरदास बाबा जी के लिए एक भजन कुटीर बना दें, परंतु वो बाहर नहीं निकले जब तक वो चला नहीं गया कि किसी से कोई फेवर नहीं चाहिए। उनका मन था कि विषयी जनों का संग जो है शौचालय के मल की दुर्गंधता से भी निकृष्ट था, कि जो लोग विषयी लोग हैं जो सांसारिक लोग हैं उनका संग करना जो है वो उस विष्ठा के पास जो रहने से ज्यादा खराब है। एक व्यक्ति आए थे कि वो नवदीप धाम में जो है एक चिकित्सालय खुलवाना चाहते थे, मतलब एक अस्पताल बनवाना चाहते थे, और कलकत्ता का व्यक्ति थे, तो उन्होंने कहा गौर किशोरदास बाबा जी ने उन्हें जो है एक परामर्श दिया कि तुम सब सचमुच में अगर तुम गौर इसमें कुछ नवदीप धाम का के बारे में कुछ करना चाहते हो तो इससे अच्छा है कि ये जो हॉस्पिटल बनाने का तुम्हारा जो ख्याल है उसको छोड़ दो, मतलब हॉस्पिटल बनाने का जो तुम्हारा अपना सपना है कि मैं नवदीप में हॉस्पिटल बनाऊं, क्या इस अपने सपने को अपने पास रखो, इसको मत बनाओ, ये सब नवदीप धाम की ये सबसे बड़ी सेवा होगी। उन्होंने उस व्यक्ति को जो है वो सलाह दी, क्या उन्होंने कहा कि विषयी जनों को निरोग बना करके क्या होगा, अब समझ रहे हो बात को क्यों बंद किया उन्होंने, ये जो विषयी लोग हैं इनको निरोग बना के क्या होगा, इनके लंबे लाइफ रहेंगे और पाप करेंगे, तो अच्छा ये पहले चले जाएं।
तो इनके लिए ऐसे चिकित्सालय मत खुलवाओ। और इसलिए जो है गौर किशोरदास बाबा जी जो है वो उन्होंने कहा कि अगर तुम सच में वास्तविक में नवदीप धाम की सेवा करना चाहते हो तो तुम्हारे पास जो समृद्धि है उसको त्याग करके यहां आ जाओ। तुम जो हॉस्पिटल बनवाना चाहते हो उसको, जो तुम्हारे पास धन है बहुत, उस धन का परित्याग करके यहां पर आ जाओ और ये सबसे बड़ी सेवा होगी। और इस तरह से जो है तुम समस्त वस्तुओं का त्याग, सब प्रकार के अन्य कर्तव्य सेवाएं मनुष्य को कर्म फल के भयावह चक्र में बांध देती हैं। और इस तरह से बाबा जी ने कहा कि तुम्हारा कोई भी कर्म, यह हॉस्पिटल बनाने का या परोपकार करने का जो भी कर्म है, ये तुम्हें कर्म बंधन के चक्कर में बांध देगी। इसलिए अच्छा है कि अपने उन सारे चीज वस्तुओं को त्याग करके भी जो है आप यहां आ जाओ। तो एक जो नवविवाहित पुरुष जो दंपति है वो गौर किशोरदास बाबा जी के पास आए, तो उन्होंने उस बताया उसको, गौर किशोरदास बाबा जी ने बताया, बड़े ध्यान से सुनिए, इस जगत में एक वैष्णव पत्नी अत्यंत दुष्प्राप्य है। किसी की पत्नी अगर वैष्णव है तो उसको अपना सौभाग्य समझना चाहिए, क्योंकि इस जगत में वैष्णव पत्नी मिलना बहुत दुष्कर है। ये गौर किशोरदास बाबा जी के शब्द हैं। यदि सौभाग्यवश किसी को ऐसी पत्नी मिल जाए तो उसे कृष्ण का वरदान मानना चाहिए। अगर किसी को ऐसी पत्नी मिल जाए जो कि जो वैष्णव हो तो उसको, अब उसको वरदान मानना चाहिए कि कृष्ण का वरदान है मेरे ऊपर कि मेरी पत्नी ऐसी मिली है और मेरी पत्नी भक्ति कर रही है और भक्ति में अब बढ़ चढ़कर हिस्सा लेना चाहती है। पत्नी पति को अथवा अपना स्वामी एवं प्रभु मानकर पूजती है, उसी प्रकार पति को पत्नी की पूजा करनी चाहिए क्योंकि वह कृष्ण की दासी है। इस प्रकार उसे अपनी दासी नहीं अपितु सदैव कृष्ण की दासी मानते हुए पति अपने भक्ति भाव को बनाए रख सकता है। गौर किशोरदास बाबा जी के कहने का मतलब है कि ऐसी पत्नी की सेवा करके वो जो पति है उसका भक्ति बच सकता है। अगर किसी की पत्नी जो है वो वैष्णवी है तो ऐसी पत्नी की सेवा करके पति जो है अपनी भक्ति को बचा सकता है। भोजन की इच्छा भजन को नष्ट कर देती है। गौर किशोरदास बाबा जी इस बात पर बहुत बल देते थे कि जिह्वा के लालच में जो भक्त लोग भी इधर उधर भाग के चले जाते, आज वहां फीस्ट है, उनके घर में आज प्रोग्राम है, बड़ा फीस्ट होगा, तो कई बार समय भी नहीं होता, भजन के लिए भी समय नहीं होता, पर फीस्ट खाने के लिए समय होता है। प्रभु जी ने बुलाया है, कैसे कैसे ना जाऊं, तो बाकी समय में भी प्रभु जी बुलाते हैं तब तो आप नहीं जाते, पर जब फीस्ट के लिए बुलाते हैं तो जरूर जाते हैं हम। तो गौर किशोरदास बाबा जी कहते थे कि ये जो भोजन है भजन में वो सबसे बड़ी बाधा है। आप प्रयास कर सकते हो इस पांच दिन के लिए कम से कम, कि चलो सारा जीवन नहीं करें तो कम से कम इस पांच दिन में हम बिना अन्न के रह सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं, आप प्रयास तो करिए, हो जाएगा, बिना अन्न का रहने का प्रयास करिए। और बिना अन्न का रहेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा, आप लाइट फील करोगे। हमारे कई मोस्टली भक्त जो है हम यहां बिना अन्न के रहेंगे अभी, तो बड़ा अच्छा लगता है पांच दिन में, कितना अच्छा होगा कि पांच दिन तक अन्न नहीं खाएंगे। एक बार जो है वो गौर किशोरदास बाबा जी के पास जो है वो महाप्रभु के उसमें जो जन्मोत्सव को सेलिब्रेट करने के लिए कुछ लोग, गौर किशोरदास बाबा जी ने कहा कि कल जो है वो फीस्ट होगा, तो बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे लोग जमा हो गए। गौर किशोरदास बाबा जी फीस्ट कर रहे हैं तो कौन नहीं आएगा, और गौर किशोरदास बाबा जी के नाम से जो है बहुत सारे लोग इकट्ठे हुए। तो गौर किशोरदास बाबा जी ने कहा अब आप अपनी अपनी माला लीजिए और बैठ के चैंटिंग का फीस्ट करेंगे हम रात तक। इस तरह से जो है वो धीरे धीरे लोग हैं वहां से भाग गए। तो लोग किसलिए आए थे कि फीस्ट करने के लिए, कि जो है हम गौर किशोरदास बाबा जी आज फीस्ट दे रहे हैं, तो गौर किशोरदास बाबा जी ने कहा चैंटिंग का फीस्ट होगा। तो गौर किशोरदास बाबा जी के फीस्ट का अपना तरीका था, इसीलिए वो कहते थे कि जो भोजन है वो भजन में बाधक है। और कहा जाता है कि उन्नत भक्त, जब किसी भक्त को अपनी नींद और अपना भोजन भी अप्रिय लगने लगे, उससे लगने लगे कि ये टाइम खराब हो रहा है, तो समझना चाहिए कि उस भक्त की स्थिति बहुत उन्नत है और वो भक्त बहुत ऊंची स्थिति में है। जिसको ये लगे कि ये नींद लेना भी बहुत फालतू है और भोजन करना भी फालतू है, तो समझना चाहिए कि इस भक्त की जो स्थिति है वो बहुत ऊंची है, हम अपनी स्थिति की तुलना कर सकते हैं। तो मतलब गौर किशोरदास बाबा जी का जो है वो इस तरह का विजन था। गौर किशोरदास बाबा जी के एक प्रिय उक्ति थी कि मात्र रसना से तृप्ति हेतु यहां वहां भोजन करना श्री कृष्ण के भजन के सभी प्रयासों को नष्ट कर देता है, कि केवल स्वाद के लिए हम चले जाएं, प्रसाद के नाम पर हम इंद्रिय तृप्ति होती है। आज प्रसाद बना प्रभु जी, कौन नहीं लेगा प्रसाद, भगवान का प्रसाद है तो प्रसाद के नाम पर फिर इंद्रिय तृप्ति होती है, और प्रसाद के लिए फिर हम इधर उधर जाते हैं कि आज तो गॉड इताई का इंस्टॉलेशन है या बर्थडे है या जो भी है। ऐसा नहीं है कि आपको कोई डिस्करेज कर रहे हैं कि नहीं जाइए और नहीं प्रसाद मत लीजिए, पर कई बार ऐसा देखा जाता है इसी के नाम पर बहुत सारी इंद्रिय तृप्ति होती है। गौर किशोरदास बाबा जी जो है इसी को कह रहे हैं कि ये अपने भजन कुटीर में रहकर या एक जगह पर भजन करते हुए किंचित प्रसाद ग्रहण करना उचित है, कि आप कुछ प्रसाद ग्रहण करें, आपसे लगता है कि मैं बिना प्रसाद के नहीं रह सकता तो कुछ प्रसाद जो है वो ग्रहण करना चाहिए। एक बार किसी भक्त ने अपनी भजन कुटीर में उत्सव को किंचित प्रसाद ग्रहण कर लिया, बाबा जी महाराज 30 दिन तक उससे नहीं बोले। मतलब उत्सव का दिन था और जैसे उस दिन फास्टिंग होती है तो उस व्यक्ति ने जो है कुछ प्रसाद ग्रहण कर लिया, तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो है 30 दिन तक उससे बात नहीं की और उससे मिले नहीं, उसका मुंह नहीं देखा। इस व्यक्ति से भी मिलना ठीक नहीं है, किसने उस उत्सव के दिन जो है वो अन्न ग्रहण कर मतलब प्रसाद ले लिया। ऐसे स्ट्रिक्ट थे मतलब भजन के मामले में। चौथे दिन उन्होंने कहा, तुमने निम्न वर्गीय वेश्याओं एवं सुंदर स्त्रियों द्वारा प्रदत्त उत्सव प्रसाद ग्रहण किया, चूंकि तुमने उस भोजन की उत्पत्ति का विचार किए बिना उसे ग्रहण किया, तुम्हारा भजन जो है वो व्यर्थ हो गया। गौर किशोरदास बाबा जी ने उसको लास्ट में बोला 30 दिन के बाद कि तुमने चूंकि ऐसा भोजन प्राप्त कर लिया लेकिन तुमने विचार नहीं किया कि कौन बना के लाया था और किस तरह के भाव में बना के लाया था, और तुमने वो भोजन ग्रहण कर लिया, इसलिए तुम्हारी जो भजन करने की जो प्रवृत्ति थी, भजन जो है वो नष्ट हो गया तुम्हारा। तो इस तरह जो है वो उनके अंदर इस तरह का वैराग्य था। उन्होंने जो उपदेश दिया है उसमें उन्होंने कहा कि कृष्ण का दिव्य नाम ही एकमात्र आश्रय है, और व्यक्ति को कभी भी कृत्रिम ढंग से राधा दामोदर की अलौकिक लीलाओं का स्मरण करने का प्रयास नहीं करना चाहिए, कि जबरदस्ती हम लीला का स्मरण करेंगे। जैसे हम कई बार होता है कि लीला पर ध्यान करते हैं, ऐसी लीला हो रही है और माला तो होती नहीं, हम सुनते हैं नहीं, स्पष्ट उच्चारण होता नहीं है। तो गौर किशोरदास बाबा जी महाराज कह रहे हैं कि जबरदस्ती लीलाओं पर ध्यान करने का प्रयास मत करिए, लीलाओं पर जो है ध्यान किया नहीं जाता, खुद हो जाता है। जब हमारा भजन पक जाएगा तो लीला स्मरण अपने आप हो जाएगा, तो भजन जब पकने लगेंगे तो लीला स्मरण भी होने लगेगा। पर जब अभी पहले जरूरी है कि हम अपने भजन को पकाएं, और भजन पकाने का मतलब यह है कि जब भजन करें तो उसको ध्यानपूर्वक कानों में जाने दें। बहुत बड़ी विडंबना है कि काफी सारे भक्त आप कई बार जप करेंगे, आप जप करते हुए सुनना किसी कई बार होता है, कई भक्तों का वो 16 शब्दों का उच्चारण नहीं कर रहे होते हैं, बड़े टाइम से जप कर रहे हैं, बड़े जोर जोर से भी उच्चारण करके करते हैं, और बड़े कई बार उन्होंने ध्यान नहीं दिया शायद इस चीज के प्रति कि मैं खुद ठीक बोल रहा हूं कि नहीं बोल रहा हूं। तो बहुत बड़ी विडंबना है ये, हमें अपने जप को जो है चेक करवाना चाहिए। दूसरों को बोलें, आसपास बैठने वालों को बताएं कि प्रभु जी मैं कैसे जप करता हूं, क्या मैं 16 शब्द बोल रहा हूं, तो उसको मुझे बता दीजिएगा कि मैं चेक करके मैं ठीक बोल रहा हूं कि या नहीं, या मैं ठीक बोल रही हूं कि नहीं। हम अपने जो चैंटिंग है उसको रिकॉर्ड कर सकते हैं, हम दूसरों के अधिकार दे सकते हैं कि हम जप करते हुए जो है वो रिकॉर्ड कर सकते हैं, इससे हमारी जप की क्वालिटी जो है वो बढ़ेगी। तो जब 16 के 16 शब्द बोलेंगे तब जो है वो जप में आपको तब वो जप जो है प्रभावित होगा अत्यधिक, और फिर आपको आनंद आना शुरू हो जाएगा। पर क्या होता है कि कई बार हम 16 शब्द ही नहीं बोले जाते, कृष्ण कृष्ण की जगह कृष्ण कृष्ण, हरे हरे छूट जाता है, कहीं राम छूट जाता है, मतलब बड़ी सारी चीजें हो रही होती हैं। तो हमें निश्चित रूप से अपने इसके ऊपर भी ध्यान देना चाहिए कि हम इसको बहुत ध्यानपूर्वक करें। उन्होंने कहा कि गौर किशोरदास बाबा जी ने कहा कि इस दिव्य नाम का कीर्तन, हरे कृष्ण महामंत्र का अनवरत कीर्तन जो है वो व्यक्ति के हृदय को निर्मल बना देगा। चाहे वो व्यक्ति कैसा भी अशुद्ध क्यों न हो, उसका हृदय जो है वो बिल्कुल शुद्ध हो जाएगा इसका अनवरत कीर्तन से। अनवरत मतलब बिना रुके हुए हमेशा कीर्तन करने से। उन्होंने कहा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे को अक्षरशः क्रमशः भगवान कृष्ण के दिव्य रूप गुण और लीलाएं को प्रदर्शित कर देंगे। उन्होंने कहा इस नाम का अगर हम अनवरत जप करते रहेंगे तो यही नाम जो है हमारे लिए भगवान के रूप को, भगवान की गुण को और भगवान की लीलाओं को हमारे सामने प्रदर्शित कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि प्रतिदिन जो है हमें नित्य रूप से जो है एक फिक्स राउंड में जप करना चाहिए और प्रतिदिन सेवा करना चाहिए और फिर जो है और अपने दिव्य स्वरूप के एकादश, उन्होंने कहा कि फिर हम अपने दिव्य स्वरूप को जान पाएंगे इस जप के द्वारा और एकादश भाव को भी जान पाएंगे जो कि क्रिया उसमें होता है कि जो गौर के जो राधा कुंड के जो बाबा जी लोग जो देते हैं ये उसमें वो एकादश भाव देते हैं। तो गौरकिशोर बाबा जी ने कहा कि आप इस एकादश भाव को अपने केवल दिव्य नाम को कीर्तनों से जान पाओगे, कीर्तन करते करते ये जो एकादश भाव है वो आपके अंदर विकसित हो जाएगा। और उन्होंने फिर कि मेरे उन्होंने अपने उसमें कहा था कि मेरे मृत जब मैं मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे मृत शरीर को जो है नवदीप की गलियों से घसीटते हुए लेके जाना। उन्होंने जो आसपास रहने वाले बाबा जी लोग थे उनको कहा था कि मेरी जो ये शरीर है इसको तुम नवदीप की गलियों से घसीटते हुए लेके जाना, क्योंकि उनको वो अपने आप को अपवित्र मानते थे। देखिए इतने भजन करने वाले, इतने बैरागी गुरु किशोरदास बाबा जी तब भी अपने आप को अपवित्र मानते थे। और क्या उन्होंने कहा कि उन्नत भक्तगण को एक मंडली उक्त अपवित्रीकरण करने का प्रस्ताव रखा है। जो एक बार की बात है कि जब गौर किशोरदास बाबा जी ने सचमुच अपना शरीर छोड़ दिया था तो कुछ वहां के जो भक्त थे उन्होंने यह प्रस्ताव रखा कि गौर किशोरदास बाबा जी का जो शरीर है वो उनको हम घसीटते हुए ले जाएंगे, क्योंकि उन्होंने इसकी इच्छा व्यक्त की थी। तो परंतु भक्ति सिद्धांत महाराज ने उन्हें चुनौती दी। उन्होंने कहा कि जिसने भी गत 24 घंटों की अवधि में किसी चरित्रहीन स्त्री के अंग का संग नहीं किया है और संदूषित है अतएव उसे मेरे गुरु महाराज का स्पर्श करने का अधिकार नहीं है। इस निर्भीक कथन को सुनकर वे कलुषित हृदय ब्राह्मण तुरंत पीछे हट गए। उन्होंने जो है ये कहा कि जिस किसी बाबा जी ने जो वहां आस पर रहने वाले थे कि जो 24 घंटे के अंदर जिस किसी ने किसी स्त्री के शरीर का स्पर्श नहीं किया है वो व्यक्ति मेरे गुरु महाराज के शरीर को छू सकता है। अगर आप में से कोई ऐसा है तो इस आ जाए और इस गौर किशोरदास बाबा जी के शरीर को छू ले। और जब भक्ति सिद्धांत महाराज ने इस तरह से कहा तो लोग पीछे हट गए। जो लोग ये प्रस्ताव दे रहे थे कि भक्ति सिद्धांत महाराज के शरीर को घसीटते हुए ले जाएंगे, भक्ति सिद्धांत महाराज ने जो है उनको यह चुनौती दी थी। 19 नवंबर 1915 को जो उसमें 19 नवंबर 1915 को सील गौर किशोरदास बाबा जी महाराज जो है वो गंधर्व का गिरधारी के नित्य लीला में प्रवेश कर गए। और वो जो तिथि है वो यही है कि कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को जो है उन्होंने इस नित्य लीला में राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश किया। और फिर जो उनका जो समाधि है वो गौर किशोरदास बाबा जी ने जो है वो की जो समाधि है वो नवदीप मंडल में, अगर आप लोग चैतन्य गौड़िया मठ गए होंगे तो वहां पर उन्होंने उनको जो समाधि है वो स्थापित की गई है। और उनकी एक पुष्प समाधि स्वान सुखंद कुज गोद्रुम द्वीप में भी है और इस तरह से जो है उनके समाधि वहां पर बनाई गई है। और जो ब्रजलीला में गौर किशोरदास बाबा जी जो है वो गुण मंजरी हैं। तो और वो राधा रानी की सेवा में नित्य हमेशा नित्यरत हैं। और उनकी एक पुष्प समाधि जो है वो राधा कुंड में भी है और जो राधा कुंज बिहारी गौड़िया मठ में भी है, उनका एक जो है वो वहां पर भी स्थित है ये। और इसके बाद में जो है गौर किशोरदास बाबा जी की जो टीचिंग्स हैं वो बहुत एलिब्रेटली दिया गया है। महाराज ने जो अभी कंप्यूटर दिया था इसमें बहुत काफी कुछ है इसमें, बट इतना तो मुश्किल है कि करना। पर उसमें कहा गया कि गौर किशोरदास बाबा जी कहते थे कि जो कोई भी व्यक्ति इस भव बंधन को पार करना चाहता है उसको और राधा कृष्ण की लविंग सेवा को प्राप्त करना चाहता है उस व्यक्ति को हमेशा एक मटेरियलिस्ट व्यक्ति जो सेंस ग्रेटिफिक फायर है या जो इंद्रिय तृप्ति करने वाले व्यक्ति है और जो कर्मी व्यक्ति है या ऐसा व्यक्ति जो स्त्री के प्रति बहुत ज्यादा आसक्त है उस व्यक्ति से दूर रहना चाहिए अगर कोई भी व्यक्ति जो है वो इस भवसागर को पार करना चाहता है तो। और उन्होंने जो एक उनको भागवतम का ये श्लोक उनके बहुत प्रिय था निष्किंचनस्य भगवान भजनो नान मुख सेवा एक ये श्लोक है भागवतम का जो गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज को बहुत प्रिय था और गौरकिशोरदास बाबा जी महाराज जो है इसको अपने जीवन में हमेशा उतारते थे और उन्होंने जो है वो कभी जैसे मैंने आपको बताया कि एक कई बार बैगिंग मतलब मधुकरी भी करते थे तो सिर्फ एक मुट्ठी जो है वो भी ब्रजवासियों से केवल ब्रजवासी से मांग के लाते थे और एक मुट्ठी चावल खा ली और उसको गंगा जी में धो देते थे और उसके बाद फिर उसको गंगा जी में धोने के बाद जो है वो उसको भगवान को भोग लगा के उस चावल को और वो उस चावल को कच्चे पकाने उकाने का झंझट नहीं था कि पकाने का झंझट करेंगे बड़ा टाइम लगेगा तो ये वह जो है उसको वैसे प्राप्त कर लेते थे महाराज किसी तरह से मतलब उनको लगता था कि ये समय जो है वो व्यर्थ में चला जाएगा इसलिए बाबूजी महाराज बोलते थे भोजन जो है भजन में बाधक है। लोमस ऋषि अगर आपने नाम सुना होगा तो लोमस ऋषि की जो आयु है वो सात कल्प की है सात कल्प की सात कल्प मतलब ब्रह्मा जी के सात दिन आप समझ गए सात कल्प और जब ब्रह्मा जब एक बार वो भजन कर रहे थे ये महाभारत में प्रसंग आता है तो एक व्यक्ति जो एक बाबा जी आए और उन्होंने उनसे कहा कि वो पेड़ के नीचे भजन कर रहे थे लोमस ऋषि तो उन्होंने कहा कि आप अपने लिए कुटी क्यों नहीं बनाते लोमस ऋषि को उन्होंने कहा कि अपने लिए भजन कुटी क्यों नहीं बनाते आप किसी को भी बोलोगे कोई भी बना देगा आपके लिए तो उन्होंने कहा इतना समय कहां है भजन कुटीर बनाने के लिए और उनकी आयु कितनी थी सेवन कल्प हम सोच भी नहीं सकते सेवन कल्प आयु थी उनकी और वो कह रहे थे मेरे पास समय नहीं है भजन कुटीर बनाने के लिए हम 20 साल 30 साल इस शरीर में रहेंगे उसके लिए पार्क फेसिंग सन फेसिंग कॉर्नर का फ्लैट कॉर्नर वाले गली भी चौड़ी होनी चाहिए अच्छा लगना चाहिए लोग आए तो उनको प्रॉब्लम ना हो मतलब ऐसा घर चाहते हैं जिसमें 25-30 साल रहेंगे शायद शरीर में या नहीं रहेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है उनको तो गारंटी थी कि वो सात कल्प तक रहेंगे लोमस ऋषि को गारंटी थी कि वो सात कल्प तक रहेंगे और तब भी जो है उन्होंने कभी भजन कुटीर नहीं बनाया और हमारे एक मिनट की गारंटी नहीं है सात सेकंड की गारंटी नहीं है तो हम बढ़िया बढ़िया जगह ढूंढते हैं रहने के लिए तो अब गौरकिशोरदास बाबा जी के केस में भी यही देख लीजिए गौरकिशोरदास बाबा जी ने कभी भजन कुटीर नहीं बनाया कभी नहीं बनाया हर पेड़ के नीचे रहते थे अलग अलग वनों में घूमते थे कभी अपने लिए कभी कुछ मांगते नहीं थे कभी मिल गया तो कभी खा लिया कभी किसी ब्रजवासी के घर के आसपास से निकल रहे हो तो कभी कुछ भिक्षा कर लिया तो पा लिया तो वो लोग कच्चे चावल देते थे कई बार जैसे पहले रीति रिवाज होता था कि लोग कच्चे चावल दे देते थे आटा दे देते थे इस तरह का रिवाज था कई बार पके अन्न भी देते थे लोग पर ज्यादातर इस तरह से होता था कि कच्चे अन्न दे देते थे तो गौरकिशोरदास बाबा जी आप सनातन गोस्वामी के केस में भी देख सकते हो कि सनातन गोस्वामी कई बार आटा मांग के ले आते थे तो उनको आटा मिलता था और आटे का क्या है चपाती बना करके भगवान को भोग लगा देते थे तो भगवान मदन मोहन से एक बार रहा नहीं गया तो उन्होंने कहा अरे सनातन कभी इसमें नमक भी डाल के दिया कर रोज जो है ऐसी रोटी खिला देता है बिना नमक की रोटी खिलाता है तो सनातन गोस्वामी ने क्या कहा आज नमक मांग रहे हो कल सब्जी भी मांगोगे ये आप व्यवस्था अपने आप कर लो मैं नहीं कर सकता ये तो ये वैराग था उन लोगों का जो है हमारे जो परंपरा के जो आचार्य लोग हैं इनका वैराग देखिए और हम चार दिन पांच दिन के लिए एक एकादशी होती है उसमें भी बड़ा सारा फीस्ट होता है बहुत बढ़िया फीस्ट खाते हैं हम इंतजार कर रहे हैं तली हुई पूड़ियां आएगी बढ़िया से कुट्टू का आटा लेके आते हैं 100 रुपए किलो बहुत बढ़िया आटा बहुत बढ़िया सब्जी बनेगी पनीर डाल के आलू की सब्जी वैसे कैसे खाएंगे पनीर भी डाल लो तो स्वाद लगेगा फिर तो बढ़िया से खाते हैं ठाठ लगा के कुछ पता नहीं लगता और हमारे यहां खास करके हमारे इस्कॉन पंजाबी बाग में 9 बजे ही प्रसाद हो जाता है एकादशी को भी, तो बढ़िया से लोग खाते हैं ठाट से, 9 बजे ही प्रसाद लेके, जबकि एकादशी में कम से कम किसी भी डिवोटी को जो सच में भक्ति में आगे बढ़ना चाहता है कम से कम 12 बजे तक तो फास्टिंग वैसे ही रखना चाहिए, वेदर कुछ दिन फास्टिंग है या नहीं है। मान लो कुछ जैसे आज गौरकिशोर बाबा जी का तिरुभाव तिथि है, अगर ना भी है तब भी एकादशी में 1 बजे से पहले कोई प्रसाद नहीं लेना चाहिए। तरीका तो यह है कि एकादशी में अगर आप नहीं रह सकते एकादशी तो शाम को कोई फलाहार ले लीजिए। तरीका यह होता है कि आप पूरे दिन फास्टिंग करिए और शाम को फलाहार या दूध या जूस जो भी लेना है वो शाम को लीजिए, ये तरीका है। बट क्या है कि हम लोग आप एक्चुअली शहरी लोग हैं, शहरी बाबू हैं, तो बर्थ टॉयलेट नहीं होता क्योंकि अन्न के बिना हमारा काम चलता नहीं है, चलेगा भी कैसे बिना अन्न से जो है वो अन्न के कलौ अन्नगतो प्राणा, जो प्राण जो है कलयुग में अन्न के ऊपर आधारित है कि बिना अन्न के जो है प्राणी, आप किसी से भी बोलते एक दिन पर मेरे से नहीं होता फास्टिंग, कोई भी बोल देगा। इवन सच बात यही है, कृष्णा कॉन्शियस में आने से पहले मैं भी कभी फास्टिंग नहीं करता था, ये सच है कि हम लोग करते नहीं, हमें लगता कि अन्न के बिना तो रह ही नहीं सकते, ये कैसे पॉसिबल है कि कोई अन्न के बिना रह जाएगा। पर आप जब देखोगे भक्तों के संग में आते हैं, हम भक्ति करते हैं, धीरे धीरे आप भगवान के नामों का कीर्तन करते हैं, तो धीरे धीरे आप ऐसे उन्नत हो जाते हैं कि आप एक दिन क्या 4 दिन और 10 दिन या 15 दिन भी फास्टिंग रख सकते हो। हमारे मंदिर में एक डिवोटी थे जो पिछले बार उन्होंने 5 दिन तक निर्जला रखा विदाउट वाटर, 5 दिन रह गए। ऐसा नहीं कि कोई कहानी सुना रहा हूं आपको, पिछले पहले के लोग अलग होते होंगे प्रभु जी, कोई कहानी नहीं सुना रहा हूं आपको कि पहले के लोग ऐसे होते थे, नहीं अभी की बात बता रहा हूं कि बनोर जो भीष्म पंचक में जो है 5 दिन तक जल भी नहीं लिया। कर सकते हैं लोग, करते हैं डिवोटी, तो अगर जो जो जितना शुद्ध है उतनी शुद्धता से इन चीजों को करेगा। तो हमारे लिए भी एक टीचिंग्स है गौर किशोरदास बाबा जी के आज स्थिरोभाव तिथि के ऊपर कि हम जितना ज्यादा से ज्यादा बैराग दिखा सकें निश्चित रूप से दिखाना चाहिए। एक मौका है, कार्तिक महीना है, भीष्म पंचक है, तो हमें भी प्रयास करना चाहिए कि जो है हम इस तरह से फास्टिंग करें और भजन की फीस्टिंग करें, ज्यादा से ज्यादा भजन की फीस्टिंग हो रही है, ऊपर चल रही है, आप यहां बैठ करके कर सकते हो, जो ऊपर नहीं बैठते आप यहां पर बैठ के जो है भजन की फीस्टिंग कर सकते हैं। कि अगर आप 16 माला कर सकते हैं तो 25 का ट्राई करिए, 25 करते हैं तो 32 के लिए करिए, 32 करते हैं तो 64 के लिए करिए, तो प्रयास करिए कि जो है वो बढ़ा के करिए, ठीक है। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, अनंत कोटि की वैष्णव वृंद की, गौर किशोरदास बाबा जी महाराज की, गौर किशोरदास बाबा जी तिरुभाव तिथि महामहोत्सव की, निताय गौर प्रेमानंदे। हरे कृष्ण।